महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं, भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमः।
आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नामक सिद्धांत शास्त्र है, जो ये षटखंडागम का ये छठवां खंड है। उसमें जो सबसे पहला है, जो प्रकृति बंध अधिकार है, इस पूरी पुस्तक में प्रकृति बंध की ही चर्चा चलने वाली है। तो हमने प्रकृति समुत्कीर्तन देखा, उसमें प्रकृतियों के नाम देखे कि कौन कौन सी प्रकृतियां है, उसकी चर्चा की। उसके बारे में संपादक जी जो सुमेरु चंद दिवाकर है, उन्होंने धवला की टीका के भी कुछ अंश यहाँ बताए थे, तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ बंध स्वामित्व विषय प्ररूपना चलेगी। ये मंगलाचरण है ना, वो पेज जहाँ वो छह मंगलाचरण है, उसमें चौथा नंबर का उसमें तो हमने पहले दिन तो छह के छह गाथाएं पढ़ी थी। हम अभी केवल वो चौथे नंबर की गाथा पढ़ते हैं वहां से। ये जो 37 पेज से बंध स्वामित्व विषय चालू हो गया, वहां से पढ़ते देखो। ब्रह्म पेज नंबर 37, यहाँ बंध स्वामित्व विषय प्ररूपना शुरू हुई है। पहले तो प्रकृतियों के नाम देखे। जो बंध स्वामित्व विषय है, यानी बंधने वाली प्रकृतियां कौन कौन सी, उसकी हमने चर्चा की थी। उसका ओग तथा आदेश से दो प्रकार निर्देश करते हैं। ओग से यानी पहले गुणस्थान से अयोग केवली तक जो 14 गुणस्थान है, तो उसमें बंध प्रकृति बंध की विच्छित्ति यहाँ बताएंगे। यानी कौन कौन सी प्रकृति, देखो विच्छित्ति किसको कहेंगे, विच्छित्ति कहते कि उसको मिटने को, नाश को। यानी उस प्रकृति का बंध उसी गुणस्थान तक है, ऊपर कहीं भी नहीं है, उसको कहेंगे वहां उसकी विच्छित्ति हुई। अनेक प्रकृति अभी हम देखने जा रहे हैं कहां किसकी विच्छित्ति होती है, परंतु विच्छित्ति जैसे हम मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छित्ति, बंध विच्छित्ति कहां होती है, तो पहले में, यानी पहले में उसका बंध है। और अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति कहां होती है, दूसरे गुणस्थान में। उसका अर्थ है पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान में उसका बंध है। MTNL पर लेना पड़ेगा शायद, मैंने उसमें रखा है। ऊपर से नीचे ले लो पूरा, रात को मैंने रखा था उसमें, फिर से लेना है ना। हाँ, उसके बिना चालू नहीं होगा। देखो अभी हम यहाँ 38 पेज पर आ गए हैं। यहाँ उन्होंने ये जो पूरा टेबल बनाया ना, 38 पेज पर एक टेबल बनाया है। उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या कहते हैं, हम जीव कांड के कर्मकांड के आधार से, गोमट कांड कर्मकांड के आधार से यहाँ बंध विच्छेद की बात बताइए। वैसे अभी शिविर में तो अब कोई नहीं आए थे, ये बहुत विस्तार से हुआ था अपने बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्व विच्छेद वगैरह की बात। हाँ तो यहाँ मिथ्यात्व में 16 प्रकृतियों के बंध विच्छेद होती है, वे प्रकृतियों के नाम हम पढ़ेंगे और ये सब याद कर लेना है। हाँ क्योंकि क्या है कि आगे चलकर उसका काल, उसका अंतर, उसके सब बातें हमको सीखनी है, तो ये उपयोगी, बहुत उपयोगी बात है। देखो मिथ्यात्व की जो 16 मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली 16 प्रकृतियाँ, यानी वो यहीं पर बनती, आगे किसी गुणस्थान में नहीं बनती। तो मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सहन, एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्मत्रय कहने से सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, अपर्याप्त का पहले भी के नाम लेते हैं, पर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण कहो या सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त कहो, विकलेंद्रिय कहने से द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, उन्होंने शॉर्ट में लिखा है ना। नरक गति, नारकानुपूर्वी और नरकायु, देखो पहले चार ख्याल में रखना, मिथ्या तो हुंडक संस्थान, नपुसक वेद और असंप्राप्त सुपाटि सहने। अभी एकेंद्रिय संबंधी, एकेंद्रिय स्थावर आतप, और इसी ऑर्डर से लेना है, सूक्ष्म साधन अपर्याप्त, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, नरक गति, नरकानुपूर्वी और नरकायु। देखो ये ऑर्डर क्यों जरूरी है कि जिनके बनती है उसकी विच्छेदी कहेंगे हम। तो मेरा प्रश्न है तेजल आपसे, इसमें से देव गति में कौन कौन सी प्रकृति नहीं बनती, ये पूरे लिस्ट में से? हाँ नहीं बनती, सूक्ष्मत्रय भी नहीं बनते, विकलेंद्रिय भी नहीं, यानी उसके पहले एकेंद्रिय स्थावर आतप उनको बन सकती है, जो भवनत्रिक वगैरह, जो सौधर्म ईशान वाले, और नारकियों के कौन से नहीं बंधेगी? हाँ यानी पहली चार ही बंधेगी। हाँ। इसलिए इस ऑर्डर से अगर हम ख्याल में रखते हैं ना, तो जब मार्गणाओं में अगर हम देखेंगे पहले गुणस्थान की बंधे विच्छित्ति, तो जो बनती है उसमें से विच्छित्ति कहेंगे, जो बनती नहीं उसमें से क्या कहना है। इसलिए ये जो ऑर्डर दिए ना वो तो याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमने पहले गुणस्थान की बंधे विच्छित्ति देखी, याद हो गया? हाँ बोलो बोलो। नपुसक वेद रह गया, हाँ ये चार पहले ख्याल में रखो। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो हो गए, चार बता दिए। हाँ
सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, द्विंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति,
बहुत अच्छा, ये 16 हो गए ना। अब हम आगे बढ़ते सासाधन गुणस्थान की बंध विच्छेद देखेंगे हम। मंजूता आ गए, ब्रह्मा आपके साथ बिठाना उनको, आओ। आज मुझे लगा ही मंजू आने वाली है, वो कभी चुकती नहीं है। हाँ ये तो आपका विषय मालूम है आपको, बंध विच्छित्ति की बात। हाँ महाबंध चल रहा है, उसमें बंध विच्छित्ति देख रहे, प्रत्येक गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। अभी किस शिविर में थी? हाँ अभी हुई नहीं थी आपने? हाँ देखो सासाधन की बात।
अभी जो शिविर हुआ था कौन से
देवलाली
जून महीने में, तब एक ऑस्ट्रेलिया से गृहस्थ आया था, वो हिंदू है, राहाटे, प्रवीण राहाटे, तो वो तो पहली टाइम शिविर में आया था आप ऑस्ट्रेलिया से, और आपने सारी मतलब जो लेक्चर्स है वो उसने
पेन ड्राइव
पेन ड्राइव
किसमें ले?
अपने वेबसाइट पर से सुने,
वेबसाइट से पहले सुने थे हाँ।
और he was a so to say fan of both of us, तो वो आया तो मैंने उससे पूछा कि तुमको याद हो गई हुई इच्छती, तो उसने कहा हाँ। यानी उसने ऐसे बताया कि पहले गुणस्थान में 16, दूसरे में 25,
संख्या उसने याद करके बताई।
तो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ना, अभी जैसा बोलता हूँ वैसे वहाँ पर भी। तो मैंने कहा आपको वर्ल्ड के 7 वंडर्स तो मालूम है, मैं आपको आज 8वां वंडर दिखाने वाला हूँ। सब लोग एकदम ही हो गए, क्या है क्या है। तो प्रवीण से पूछा तुम बोलोगे आ जाओ, तो उसके हाथ में माइक दिया, तो उसने धड़ाधड़ पहले बताया ही इज़ अ नॉन जैन पर्सन, लेकिन वो कहता है कि मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन हम तो कहते वो जैन है, देखो अभी वो। तो उसने सारे बोल दिए, तो लोग इतने हवक हो गए, फर्स्ट टाइम आता है और इतनी याद, और काफ़ी एज है।
करना नियोग तो उसके लिए नया ही था ना सर।
अबाउट 40-45 एज होगी उसकी, पर बहुत लोगों पर इम्प्रेशन हो गया।
देखो अभी हम यहाँ बंद विच्छित्ति की बात देख रहे थे, शासाधन में 25 प्रकृतियाँ है बंद विच्छित्ति होने वाली। देखो अनंतानुबंधी की 4, स्त्यान वृद्धित्री कहने स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, दुर्भग त्रिक का अर्थ होता है दुर्भग अनादेय दुस्वर, दुर्भग दुस्वर और अनादेय। अब संस्थानचार्य ने बीच वाले लेना नगरोध परिमंडल से, नगरोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन, बीच वाले सहनन, नगरोध से चालू करना पहला भी नहीं, क्योंकि हुंडक संस्थान है वो हमने पहले गुणस्थान और असंप्राप्त श्रोताटी का सहन दोनों पहले गुणस्थान में देखे थे। बीच वाले 4 दुर्भग दुस्वर और अनादेय, हाँ आगे बताएंगे। स्त्रीवेद नीच गोत्र, ये क्या लिखा है? 4 सहनन दुर्गमन क्या होता है? अच्छा अच्छा अप्रशस्त व्याय गति, पहली बार मुझे याद नहीं दुर्गमन, हाँ अप्रशस्त व्याय गति दुर्गमन। स्त्रीवेद निज गोत्र, तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी उद्योत और तिर्यंचायु। देखो हमने ऐसे याद किया था अनंतानुबंधी 4 ये 3 निद्रा 4 संस्थान 4 सहनन और फिर तिर्यंच गति संबंधी 4, यानी ये याद रखने के लिए आसान होता है। और फिर नहीं हाँ दुर्भग दुस्वर अनादे और लास्ट में स्त्रीवेद नीच गोत्र और अप्रशस्त भी आएगा। कैसे भी याद करो आप, परंतु वो 4-4-4 याद करने के लिए पहले 4 अनंतानुबंधी, फिर 3 निद्रा, 4 संस्थान, 4 सहन है, फिर तिरंज वाली 4 और फिर वो 3 दुर्भगादि 3 और स्त्रीवेद वगैरह 3। अभी मिश्र में कोई बंध विच्छित्ति नहीं, इसका अर्थ है वहां नए से कोई प्रकृति बंध रही थी और वो मिट गई, ऐसा नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में यहाँ 10 प्रकृतियां बताई, ये ओग से नहीं जनरल चारों गतियों की अपेक्षा बताया जाता है। जब एक एक गति में अलग से देखेंगे तो यहाँ चौथे में जो 10 प्रकृतियां बताई है ना, पहले हमने उसके नाम देखते हैं चौथे वाले के, यहाँ का कषाय कौन सा, तो अप्रत्याख्यान आवरण 4 यहाँ तक ही बनते, पहले से यहाँ तक बनते, आगे नहीं बनता। वज्र ऋषभ नाराच सहनन, वो नाराच डालो बीच में, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, मनुष्य द्विक कहने से मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तथा मनुष्यायु। अब इसमें जो हाँ ये पहले 4 कषाय छोड़ दो, बाकी जो 6 प्रकृतियां हैं वो मनुष्य और तिर्यंचों के लिए दूसरे गुणस्थान तक ही बनती है, समय दृष्टि को ही नहीं बनती। समय दृष्टि मनुष्य तिर्यंच देवगति को बांधेंगे, वो इनको नहीं बांधते, तो उनके लिए वो बंध विच्छित्ति जो हमने 25 देखी थी वहां और 6 ऐड करनी पड़ेगी।
दे,
हाँ वो छः आए हैं ना, वो ऊपर चले जाएंगे मनुष्य गति के लिए, तीर्यंश के लिए भी। देश विरत में चार कषाय जो प्रत्याख्यान वर्ण के, प्रमत्त संयत में देखो अ वाली है, अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति अरति और शोक। अप्रमत्त में देवायु। अब अपूर्वकरण में टोटल 36 है, उसके पहले भाग में निद्रा और प्रचला है, छठे भाग में 30 और सातवें भाग में अंत में चार नौकषाय। देखो निद्रा प्रचला है प्रथम भाग में, यहां से पढ़ते हैं, छठे में तीर्थंकर निर्माण प्रशस्त विहार गति, पंचेंद्रिय ने पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, आहार कहार कंगोपांग, समचतुर संस्थान, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर वैक्रिय कंगोपांग, वर्णगंध रसस्पर्श, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय। यानी ये सब मिटती है, अकेली यशस कीर्ति बनती रहती है आगे तक है। चरम में यानी अंतिम भाग में हास्य रति भय और जुगुप्सा। ये थोड़ा याद करने में कठिन लगेगा, परंतु पहले दो है, अंत में चार है और बीच में 30 है। तो उसमें तो देखो ये मुनिराज है ना, देवगति बांध रहे हैं, तो देवगति संबंधी है और एक्स्ट्रा है उसमें तीर्थंकर और आहारद्वीप को भी जो बांध रहे उनके बंधे विच्छित यहाँ हो जाएगी, ये उसका अर्थ होता है। हाँ सातवां भाग, सातवां भाग, सात भाग करना है आठवें के, तो उसमें से ये चरम, ये हमने सात भाग, उसमें से पहले भाग में निद्रा प्रचलय बंध विच्छित्ति की बात चल रही। आप उनके बाजू में बैठो अगर चाहिए, मैं आप देखना चाहती है तो हाँ। देखिए आपका ये प्रश्न है, आगे तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा, आगे की बात छोड़ो, जब से बंधी है कितना बंधा, अंत कोड़ाकोड़ी, अंत कोड़ाकोड़ी सागर की जो स्थिति बनती है तो उसमें आबादा काल कितना होता है, अंतर्मूर्त। बहुत अच्छा। और आवली के बाद एक्चुअली उदीर्णा भी, तो उदीर्णा उसकी नहीं होगी परंतु अपकर्षण वगैरह तो चालू हो जाते हैं उसके, परंतु उसका क्या होगा फिर, उदय किस रूप से आएगा, तो नाम कर्म की अन्य प्रकृति में उसका उदय का बंटवारा हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है ऐसा उनका प्रश्न है, क्योंकि यहाँ उदय तो अन्य प्रकृतियों का भी चल रहा है ना, यहाँ मनुष्य गति है और ये बाकी जो हमने जो उदय की विच्छित्ति देखी, तो उदय तो चल रहा है बहुत सारी प्रकृति, मनुष्य योग्य जो प्रकृति है उसका उदय तो चल ही रहा वास। तो तीर्थंकर प्रकृति जो बंदी है तो उदय के सन्मुख आते उसका क्या होता है, उदय का एक निषेक आते आते जिसको हम थिउक का संक्रमण कहते हैं, तो वहां जितने उदय रूप है उसमें बंटवारा हो जाता है उसका। ये अपना 15 पुस्तक में हमने उदय के प्रकरण में देखा था उसको, कि जो जो उदय रूप नहीं है वो प्रकृतियां उदय रूप प्रकृतियों में टर्न होकर उदय में आकर निकल जाती है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं कहेंगे हम, पर बंदी है तो जाएगी नक्की। पर उसका भी वो तो 13वें गुणस्थान में जाके उसका अपने रूप से उदय में आ, उदय अपने रूप से होगा, बंध विच्छित्ति सबकी हो गई, बनता 8वें तक ही है और उसका उदय होगा 13वें में। वो आता है ना, हमने पहले देखे थे कहाँ तक बनती है और कहाँ तक उसका बंध विच्छित्ति कहाँ है और उसका उदय कहाँ होता है या उदय विच्छित्ति कहाँ होती है, इस तरह से उसकी बात आती है। यानी वो बनते हैं चार, चार से लेकर भी 8वें तक, उसका उदय होगा 13वें में, तब तक उसका क्या होगा बनने के बाद, तो सत्ता में जो पड़ी है तो उसकी निषेक रचना हुई है, तो आबादा के बाद तो वो निषेक नीचे आ ही रहे हैं ना, तो आ रहे तो उदय में आता हुआ निषेक का क्या होगा, तो थ्यूक संक्रमण से अन्य प्रकृति रूप वो परमाणु अन्य रूप होकर उदय में आकर खिर जाएगी।
इस तरह से संक्रमित होकर वो अन्य में आते हैं नाम कर्म,
उसको तो संक्रमण तो नहीं कहेंगे।
अच्छा थ्यूक संक्रमण कहा ना,
थ्यूक कहा, थ्यूक संक्रमण ये संक्रमण नहीं है।
अच्छा
ऊपर सत्ता में पड़े हुए ऊपर संक्रमण,
ये पॉसिबिलिटी चौथे गुणस्थान में भी हो सकेगी ना।
हाँ बिल्कुल होगी। क्योंकि सर्वत्र अंत कोड़ा कोड़ी का ही बंद है उसका। और जो 33 सागर में गए अभी उसका भी क्या हुआ? क्या हाँ अप्रशस्त उपशम में यानी सत्ता में पड़ा है, उदय रूप नहीं हो रहा है, अन्य रूप होकर उदय में आ रहा है। हाँ देखो ये हमने आठवें गुणस्थान के बंधे विच्छेदी देखी अभी है, नौवे में प्रथम भाग में पुरुषवे, ये क्रम से एक 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 की बंधे विच्छेदी होती चली जाती है। दूसरे में संज्वलन क्रोध, तीसरे में संज्वलन मान, चौथे में संज्वलन माया, पांचवे में संज्वलन लोभ। ये नौवे गुणस्थान तक ये मुनि का बंध है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ये बंध विच्छेदी किस किस की होती है? तो जो पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, अंतराय पांच, यशस कीर्ति, नाम में से एक यश कीर्ति बनती थी और उच्च गोत्र। परंतु यहां बंध कितने का हो रहा है? छह मूल प्रकृतियों का। तो किसका नाम नहीं लिया बोलो? आयु मोहनी तो बनती ही नहीं है, बंधने वाले का किसका नाम नहीं लिया? ब्रह्मा सातावेदनी वो बंद चालू रहता है ग्यारहवे बारहवें तेरहवें में, इसलिए विच्छित्ति होने वाली इतनी। यहाँ बनती है सत्रह प्रकृतियां, उसमें से सोलह की बंद विच्छित्ति हुई। खाली सातावेदनी का बंद होगा ग्यारहवे में भी, बारहवें में भी, तेरहवें में भी। तो तेरहवे में जाके सातावेदनी की बंद विच्छित्ति कहेंगे हम। देखो उपशांत कषाय में विच्छित्ति नहीं है, बंद किसका है? सातावेदनी का। ये यहाँ फूली जो लगाई है विच्छित्ति के लिए लगाई। बारहवें में भी, क्षीण मोह में भी विच्छित्ति नहीं है, यानी जो बंध है वो ऊपर भी चल रहा है। और संयोग केवली के लिए सातावेदनी की बंध की विच्छित्ति, यानी संयोग केवली के अंतिम समय तक सातावेदनी का बंध है, भले वो एक समय वाला है परंतु है, उसके आगे नहीं है। अयोग केवली में तो सवाल ही नहीं, कोई बंध ही नहीं वहां पर, तो विच्छित्ति होने का भी सवाल नहीं। ये उन्होंने कर्मकांड के आधार से टेबल बना के यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी हमें जो मूल भूतबली आचार्य की जो बंध स्वामित्व विषय की प्ररूपना है उसको पढ़ेंगे। ऊपर जो प्राकृत में लिखा है ना उसका नीचे हिंदी लिखा, देखो पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण। अभी इनकी पद्धति कैसे देखो, ये कहाँ से कहाँ तक बनती है, बस इनका ये कहना है। स्वामित्व कौन है, इसका बांधने वाला जीव कौन है? तो पांच ज्ञानावरण को बांधने वाला एक से दस, और ये दसवें में जो बंधने वाली वो सब यहां ले ली। तो पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यश कीर्ति, उच्च गोत्र तथा पांच अंतरायों का कौन बंधक है, कौन अबंधक है, अबंधक भी कौन है वो भी पूछा, और बंधक भी कौन है वो भी पूछा। तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर यानी पहले गुणस्थान से लेकर सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत पर्यंत बंधक है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत के द्रव्य के नहीं चाहिए, वो द्रव्य शब्द निकाल दो बीच में से। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत के चरम समय तक पहुंचकर अंत में बंध की विच्छित्ति हो जाती है, यानी अंतिम समय तक बंध है ऊपर नहीं है। ऊपर जो प्राकृत है ना ब्रह्मा, उसमें भी तीसरी लाइन है सुम सांप्राय शुद्धि संजय दौवाय, ऐसे एक पूरा एक शब्द चाहिए। उन्होंने संज के बाद बिंदी लगाई इसलिए दौवाय का अर्थ नीचे द्रव्य के किया, वो संजद प्राकृत दौवाय साथ में चाहिए और बीच में बिंदी लगाई वो नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा एक शब्द है शुद्धि संजद। उन्होंने वो तो द निकाला अलग, तो दौवाय का अर्थ द्रव्य के कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 39। इसलिए आदि के 10 गुणस्थान वाले जीव बंधक है। बंधक कौन है पूछा था, और अबंधक कौन रहेगी? अभी 11 12 13 14 वो अबंधक है, इसलिए शेष अबंधक है, क्योंकि हमारा हिसाब 14 गुणस्थानों का है, तो उसमें बंधक अबंधक की चर्चा चल रही है। ये उनकी पद्धति है बताने की, बंध स्वामित्व विषय में इस पद्धति से उनका कथन होगा सभी प्रकृतियों का, इसलिए हमको कौन कहाँ बंध विच्छित्ति होती वो देखना है। अब तीर्थंकर प्रकृति के बंध विच्छित्ति आठवें में है, मनीषा बेन आपके लिए प्रश्न है, तो उसका बंध कहाँ से कहाँ तक होता होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बहुत अच्छा, चार से, पहले से मत कहना क्योंकि पहले तीन गुण स्थानों में तो बनती ही नहीं है, इसलिए कौन कहाँ बनती है। जैसे आहारक का भी बंध विच्छित्ति आठवें में है, परंतु बनती सातवें और आठवें वाले को, ये बंध विषय में ये सब हमको नक्की करना है। ना बंद नहीं है, बंद नहीं है, यश कीर्ति का बंद दसवें तक ही है, उसकी सत्ता है, उसकी बात नहीं चल रही। क्या बंद तेरहवें तक है, तेरहवें तक नहीं होता, ऐसा ही प्रस्वरूप है। क्यों वस्तु देखो देखो, अरे उसका सत्ता में पड़ा है ना, उसका उदय चल रहा है, उदय को कौन, अरे बनता ही रहेगा तो मोक्ष कब जाएगा? बंद होना कुछ अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, छठे में असाता की बंध विच्छित्ति हुई और साता की तेरहवे में हुई और उदय की, दोनों का उदय चौदहवें तक है ये तो बाद में देखेंगे हम, कौन से बंध उदय की चर्चा करेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे, अभी तो बंध 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 की बात चल रही है। देखो 39 पेज है, स्त्यान गुरुद्धित्रिक। अब ये पहले दसवें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति देखिए, पहले से दसवें तक बनते हैं। अब स्त्यान गुरुद्धित्रिक अनंतानुबंधी चार स्त्रीवेद तिर्यंचायु, ये कहा के बंध विच्छित्ति या दूसरे स्थान, तिर्यंच गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दुस्वर अनादेय तथा नीच गोत्र के बंधक अबंधक कौन है? यदि मिथ्या दृष्टि से सासाधन सम्यक पर्यंत बंधक है, ये बंधक है और शेष अबंधक है, यानी तीसरे गुणस्थान के ऊपर सारे ही अबंधक है, ये उसका अर्थ होता है। अब निद्रा प्रचला का कौन, आप कहेंगे पहले दसवें की फिर दूसरे की ऐसी उन्होंने ऑर्डर क्यों दी, कोई बता सकते ऐसी ऑर्डर? अश्विन भाई देखो देखो, ऑर्डर ऐसी होती कि पहले ज्ञानावरण की बात करते फिर दर्शनावरण की करते फिर वेदनीय की करेंगे फिर मोहनीय की करेंगे, इस तरह से वो क्रम से करेंगे। पहले ज्ञानावरण के साथ जितने हैं वो बता दिए, ज्ञानावरण के तो पांचों पांच लिए नहीं है और दर्शनावरण की चार ही ली थी, इसलिए दर्शनावरण की बची हुई स्थान वृद्धि को यहाँ लिया और उसमें से बची हुई निद्रा प्रचला को अब लेंगे, तो दर्शनावरण पूरा हो गया, अंतराय तो पहले के उसके साथ हो गया था, तो जो जो बचे उसकी बात बताते चले जाएंगे आगे। यानी ये हमें सोचना है कि ऐसा ही क्यों, यही पर इस, क्योंकि हमने जब वो त्रुटितांश डिराइव किया था तो इसी पद्धति से किया था कि उनकी मेथड क्या होती है, किस क्रम से बताते हैं। देखो स्त्यान गुरुद्धित्र के सब हमने पढ़ा ना, तो पहले दो गुणस्थानों के बंधक है, आगे के अबंधक है। अब दर्शनावरण के और बचे है निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला का कौन बंधक है कौन अबंधक है? ये कैसी प्रकृति तो ध्रुव बंधी है, इसलिए एक से लेकर आठवीं के पहले भाग तक सारे बंधक हो गए। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में, ये आठवें गुणस्थान का नाम है, उपशमकों तथा क्षपकों पर्यंत बंधक है, यानी उपशम श्रेणी वाले भी और क्षपक श्रेणी वाले भी। अपूर्व करण के काल में संख्यातवे भाग बीतने पर बंधकी विच्छित्ति होती है, संख्यात्वा भाग यानी सात भागों में से पहला भाग, पहले भाग में बंधकी विच्छित्ति, पहले भाग में बंध हो रहा था, सात भाग किए हमने, दूसरे भाग से उसका बंध नहीं है, तो सातवें भाग के लिए संख्यात्वा भाग कहा, ये बंधक है शेष अबंधक है। अब देखो ज्ञानावरण दर्शन हो गए ना पूरे, अभी वेदनीय का नंबर आता है, तो साता वेदनीय का कौन बंधक अबंधक है? क्योंकि तो मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत बंधक है और संयोग केवली के काल के अंतिम समय व्यतीत होने पर बंधक की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है शेष अबंधक। अब शेष में अकेला अयोगी आ गया, अयोग के लिए वो अबंधक है, बाकी सारे बंधक है। अब वेदनी का एक भेद हुआ, अभी दूसरा ले लिया, असाता को लिया। अब असाता के साथ बंध विच्छित्ति होने वाली पूरी लिस्ट यहाँ ही बता दिए। मूल पहली प्रकृति का नाम लेते जो बची है अभी, और बाकी उसके साथ वाले सबको लेना। असाता वेदनिया अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति के कौन बंधक है और कौन अबंधक है? मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत पर्यंत बंधक है, क्योंकि छठे गुण स्थान में इनके बंध विच्छित्ति हो, ये बंधक है। शेष अबंधक है। देखो चूंकि ये कंटिन्यूस नहीं बन रही है उसका प्रतिपक्षी, तो कौन बंद कर सकते हैं? तो छठे तक के, ऊपर के नहीं। नहीं नहीं, उनका कहना है साता साता बनती है ग्यारहवें बारहवें में, यश कीर्ति क्यों नहीं बनती, ये उनका प्रश्न था। हाँ, तो प्रत्येक प्रकृति का ऐसा ही स्वभाव होता है, कहाँ तक बंधने है, कहाँ बंध विच्छित्ति हुई। अब कहीं ये ऐसी पार्शलिटी की एक को बांधते हैं दूसरे को नहीं है, इसीलिए तो हमको इसमें से, क्योंकि केवल ज्ञानी भी क्यों है वो नहीं कहते, क्या है उसको बताएंगे, कहाँ क्या होता है, कौन सी विशुद्धि के साथ कितनी कौन सी बन सकती है, उसकी बात है यहाँ पर। और कोई बंद होना कोई अच्छी थोड़ी बात है। किसका? दो प्रकृतियां अलग है तो उसके उदय भी अलग है। यश कीर्ति का तो यश के रूप में, उसका साता असाता का अलग है। ऊपर के गुण स्थानों में असाता का कोई ऐसा फल तो है ही नहीं है, केवल वो प्रकृति जिस रूप से बांधी थी उसका नाम असाता है। तो अत्यंत मंद अनुभाग, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणा घटता 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 नहीं के बराबर है अनुभाग उसका उदय। उनका ऐसा है कि असाता का फल अलग होगा साता का और यश कीर्ति का अलग होगा। बिल्कुल प्रकृति अलग, क्योंकि यश कीर्ति वो नाम कर्म की प्रकृति है और वो वेदनी की है, चूंकि वो वेदनीय का काम इंद्रिय जनित सुख दुख में होता है। वैसा फिर भी उनके तो साता या असाता का उदय वैसा रहता है, वहां पाया जाता है। उपसर्ग केवली हो तो भी और वो भी अंतर्मूत में पलटता है ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये हमने निद्रा प्रज्वला की बात बताई, साता वेदनी की देखी, असाता की भी पढ़ ली है ना। वेदनी हुआ, अभी मोहनीय में जो बचा है उसकी बात करेंगे। मोहनीय में से क्या क्या गया है, पहले गुणस्थान में क्या जाता है मोहनीय में से, और नपुसक वेद। हाँ, दूसरे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी और श्री वेद। इस तरह से हमको सोचना है एक एक प्रकृति लेकर। तो देखो मिथ्यात्व नपुसक वेद, नरकायु नरक गति, चार जाति, कुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त तथा साधारण का कौन बंधक कौन अबंधक है? मिथ्या दृष्टि बंधक है शेष अबंधक है। ये प्रकृति ऊपर किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती है। अब यहाँ उनके ऑर्डर अलग थी कि जो मोहनी की पहले ली इस तरह से, फिर नाम की ली आयु नाम वगैरह। अब मिथ्या तो हो गया ना, अनंत अनुबंधी ऊपर बता चुके, अब अप्रत्याख्यानावरण को लेना है। हाँ, एक इंद्रिय हमने कैसे किया था, एक इंद्रिय स्थावर आतप किया था, और फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्इंद्रिय, यहाँ चारों जाति इकट्ठी ली। हाँ, पहले जो हमने याद की थी वही है सब, परंतु जरा अलग से नाम आया तो देखो वहां हमका क्रम जो हमने बताया था उसका कुछ अलग उसका कारण था, और यहाँ तो हमको मोहनी की कितनी है, नाम की कौन सी है, ये कौन सी, इस तरह से एक साथ बताना था। देखो नीचे अप्रत्याख्यानावरण चार, मनुष्य गति, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन, मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्विका, कौन बंधक है कौन अबंधक है, तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक्त पर्यंत बंधक है, शेष अबंधक है। हाँ तीसरे गुण स्थान में, हाँ किस में दे? असंयम हो रहा है ना, पहले चार गुण स्थान असंयम ही के है। हाँ तो तीसरे में वो तो अप्रत्याख्यान का काम है ना, अनुमात्र भी संयम नहीं होने देते, वही कार्य है जो चौथे में वही तीसरे में है। अप्रत्याख्यान वर्ण का कार्य वही है, क्या है? थोड़ा भी संयम नहीं होते देते, अनुवृत्त भी नहीं होने देते, वो तीसरे में भी वही कार्य है उसका। कार्य तो सब जैसा जो जहाँ कार्य हो सब जगह समय होने दो, परंतु चारित्र मोहनीय का प्रश्न उनका चारित्र मोहनीय संबंधी है। गुणस्थान क्यों हो ये उनका प्रश्न नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय तीसरे वाले को भी और चौथे वाले को भी है, क्या डिफरेंस है? उसकी अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं, वो अनुमात्र भी वहाँ संयम यानी संयमा संयम कुछ नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण का पहले गुणस्थान में भी है कि नहीं, चौथे में भी है, क्या है? वो सारे असंयम ही है। और अनंतानुबंधी का कार्य और ज्यादा ये है ना कि सम्यक तो नहीं होने देता, या सम्यक दृष्टि है तो भ्रष्ट होकर साधारण में आ जाता है। हाँ देखो ये हमने देखा ना, शेष अबंधक है। मेरा ये प्रश्न यहां मनुष्य को नहीं लिया है, क्योंकि ये सब क्या है, पहले से लेकर चौथे तक बंधक बताए, परंतु आयु को अगर यहाँ लेते तो तीसरा वाला तो बंधक नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा अलग से बताएंगे। तीसरे गुणस्थान में कोई आयु नहीं बनती, इसलिए ये सारे एक साथ विच्छित्त होने वाले नहीं ले यहाँ पर आयु को छोड़कर, क्योंकि आयु देखो देखो क्यों, अगर मनुष्य आयु को वहां लेते हम जो चौथे गुणस्थान में बंधे विच्छित्त होने वाली वो प्रकृतियां थी, वहां मनुष्य आयु को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाकी प्रकृतियों के लिए क्या कहा, वो पहले से चौथे तक बनती है, ऐसे आयु के बारे में कह सकते हैं? क्योंकि तीसरे में आयु बनती नहीं है, इसलिए उसका कथन अलग करेंगे। अभी 40 नंबर के पेज पर आते हैं। प्रत्याख्यानावरण चार का कौन बंधक है कौन अबंधक है, इसकी बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? पांचवे में। तो पहले से पांचवे तक कहेंगे बंधक, ख्याल में आती है बात? तो मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत पर्यंत बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है, ऊपर के गुणस्थान वाले अबंधक है। देखो अभी तक मोहनीय में से हमने देखा था मिथ्या तो गया, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सब गए, हाँ अब नपुसक वेद श्रीवेद भी गया है, अब ये पुरुष वेद की यहाँ बात करेंगे। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का कौन बंधक है कौन अबंधक है, ये है और कौन रह गया यहाँ लिखना, ब्रह्मा हम लास्ट टाइम हमने करेक्शन किया हुआ है, बंधक के बाद है करो और अबंधक के पहले कौन लिखो। तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण में उपशमक शपक पर्यंत बंधक है। अब अनिवृत्ति बादर के काल के संख्यात भाग बीतने पर विच्छित्ति होती है, यहां संख्यात बहुभाग चाहिए, संख्येज्जा भागम लिखा है ऊपर, संख्येज्जा ने अनेक वचन है ना, संख्येज्जा नहीं संख्येज्जा भाग यानी संख्यात बहुभाग बीतने पर विच्छित्ति होती है। क्योंकि देखो ये कैसे कह सकते हैं, हमने तो कहा ना पहले भाग में दूसरे भाग में, पर वो समान भाग नहीं है पहला भाग। पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति कब होती है? पहले भाग में, परंतु कब? क्योंकि अंतर करने के बाद, अंतर के बाद दो प्रकृतियों का उदय चलता है, एक पुरुष वेद का और एक कोई संज्वलन का। तो वो पुरुष वेद का उदय तो चलता रहता है, तब तक उसका बंध भी है। और ये अंतर करने का कार्य ही संख्यात बहुभाग बीतने पर होता है। तो इसलिए जो पहला भाग है वो बहुत बड़ा है, इसलिए संख्यात बहुभाग जाने तक उसका बंध हो रहा है। ये बंधक है, शेष अबंधक है। मान माया संज्वलन में भी यही बात जाननी चाहिए, उसमें भी ऐसे ना संख्यात बहुभाग जाने तक। विशेष यह है कि शेष शेष के संख्यात भाग बीतने पर्यंत बंद होता है। शेष शेष के यानी क्या कहा, जैसे अभी क्रोध गया, अभी जो बचा हुआ है उसका संख्यात भाग गया, उसके बच्चे का संख्यात भाग गया, इस तरह से उसमें भी संख्यात जा ही लिखा है ने बहुभाग, संख्यात बहुभाग ही होना चाहिए। ये बंधक है, शेष अबंधक है। इसी प्रकार संज्वलन लोभ में है, विशेष अनिवृत्तिकरण के काल के चरम समय पर्यंत बंद होता है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। हमने देखा ना अंत तक लोभ का बंध है, नवे गुणस्थान के अंतिम समय तक। अभी क्या रहा, अभी हास्य रति भय जुगुप्सा का कौन बंधक है, लेकिन मिथ्यात्व से लेकर अपूर्वकरण के उपशमक तथा क्षपक पर्यंत बंधक है। अपूर्वकरण के चरम समय के बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। ख्याल में आता है ना, उन्होंने किस ऑर्डर से कैसे कैसे ले लिया। अभी मोहन ये सब हो गए, अब आयु की बात है, मनुष्य आयु का कौन बंधक है, कौन अबंधक है। मिथ्या दृष्टि सांसाधन तथा असंयत सम्यक भी बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। अब यहाँ इन जनरल बात चल रही है, चौथे गुणस्थान वाला बंधक है कहते हैं, तो देव और नार की चौथे गुणस्थान वाले बांधेंगे, मनुष्य तीर इंच तो नहीं बांधेंगे, है ना। देवायु का कौन बंधक है, कौन अबंधक है। मिथ्या दृष्टि सांसाधन असंयत सम्यक्वी संयता संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत बंधक है। मनीषा बेन पहले से सातवें पर्यंत बंधक है, ऐसा क्यों नहीं कहा, एक एक का नाम लेने की क्या जरूरत, तीसरे में आयु का बंधन नहीं होता, इसलिए हर एक का नाम लेना पड़ा उनको। अब कहते अप्रमत्त संयत के काल के संख्यात वे भाग बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। इसका अर्थ समझते हैं, जिस जीव ने छठे गुणस्थान में आयु बांधना शुरू किया है, उसी के सातवें में वो कंटिन्यूएशन में आयु बनती है, और संख्यात वे भाग तक हो तो बंध की विच्छित्ति हो जाती है, ये उसका अर्थ है। और संख्यात भाग इसलिए भी कहा, जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं ऊपर विशुद्धि भी बढ़ती है, तो उस विशुद्धि के साथ आयु का बंध नहीं होगा। हाँ। अब देवगति नाम की बात है। अभी नाम कर्म में से वो नरक गति हमने देखी, तीरंज गति देखी, जो बहुत सारी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई है। फिर भी अब यहाँ नाम कर्म का नंबर है, तो जो बची हुई उसकी बात करेंगे यहाँ पर। देवगति अभी जो आठवें गुणस्थान में जाने वाली उसको एक साथ बता देंगे। पंचेंद्रिय जाति वैक्रियक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर समचतुर संस्थान वैक्रियक अंगोपांग वर्णादि चार देवानुपूर्वी अगुरु लघु चार कौन से उच्छ्वास हाँ। प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय निर्माण का कौन बंधक और कौन अबंधक है। ये कौन शब्द दोनों के लिए बताए उन्होंने, कौन बंधक कौन अबंधक है। ये तो मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान के उपशमक शपक पर्यंत बंधक है, अपूर्वकरण के संख्यात वे नहीं चाहिए, संख्यात भाग चाहिए, क्योंकि सात में से संख्यात बहुभाग चाहिए, सात में से छह भाग गए ना, संख्यात बहुभाग बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है। यहां लिखा है संखेज्जा भागम गंतुनम, इन्हें संख्यात बहुभाग बीतने पर बंधक की उच्छित्ति होती है। ये बंधक है, शेष अबंधक है। समझ में आती है बात ये? हाँ। अब उसके साथ आहारक शरीर, उसकी भी बंध विच्छित्ति वहां पर है, परंतु वो पहले से छठे तक बनती नहीं है, इसलिए इसकी बात अलग से बताई। नहीं तो इनका बंध विच्छित्ति एक साथ होती थी, परंतु बाकी प्रकृतियां पहले गुणस्थान से बनती, वैसे ये नहीं बन सकते। इसे तीर्थंकर को भी नहीं लिया, आहारक को भी नहीं लिया। तीर्थंकर की भी बात अलग से बताएंगे, क्योंकि आहारक तो चौथे से नहीं बनती है, सातवें आठवें में ही बनती है, और तीर्थंकर तो चौथे से आठवें तक बनतेगी। तो आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का कौन बंधक है, कौन अबंधक है, अप्रमत्त और अपूर्व करण के यहाँ पर भी संख्यात बहुभाग करना, संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर ब्रह्मा, ये संख्यात वे भाग किए ना, संख्यात बहुभाग होना चाहिए, बंध की विच्छित्ति होती। प्राकृत में तो संख्यात जा है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। शेष में अभी नीचे के भी शेष में लेना पड़ेगा। आहारक के अबंधक कौन है? तो पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे गुणस्थान वाले, और फिर ऊपर आठवें का जो बाकी बचा हुआ एक भाग है, सातवां भाग, और ऊपर के सारे गुणस्थान वाले, ये अबंधक है। तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है, कौन अबंधक है? कहते असंयत समय दृष्टि से अपूर्वकरण पर्यंत बंधक है। अपूर्वकरण के संख्यात बहुभाग, यहाँ पर भी बहुभाग करना, बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है। ये बंधक है, शेष अबंधक है। यानी पहले तीन गुणस्थान वाले अबंधक हैं, और जब बंध विच्छित्ति होकर ऊपर के भी गुणस्थान वाले अबंधक है। शंका, कितने कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है? देखो यहाँ पर भी नामा गोदकम लिखा, आपने सुना होगा, तो गुरुदेव को भी तीर्थंकर गोत्र कहने के उनके प्रवचन में आता है। तो यहाँ जब तक वो तो गति संबंधी परभव की आयु बनती है, आयु कहो या गति बनती, आयु तो नहीं बनती है, गति बनती है, इसलिए उसको गोत्र कहा। वहां पर देवगति का बंध है ना, दसवें तक, आठवें तक, इसे नाम गोत्र कहा यहाँ पर। समाधान, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। दर्शन विशुद्धता, तथ्य यानी मनुष्य गति में, ऐसा हमने लिखा लास्ट टाइम, यानी ये सभी 16 का 16 उसमें होगी। देखो इन 16 कारणों से जीव पड़ता है, दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु निरतिचारता, आवश्यकेषु अपरिहीनता, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधु समाधि संधारणता, वैयावृत्य योग युक्तता, साधु प्रासुक परित्यागता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता, प्रभावनता, अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। देखो ये फुटनोट देखते रहिए जरा, पेज नंबर 41 का धवला टीका में जो 16 कारणों के नाम गिनाए हैं, उनमें क्रम में थोड़ा अंतर है। यहाँ 8वें नंबर पर साधु समाधि संधारणता के स्थान में साधु प्रासुक परित्यागता पाठ है। 9वें नंबर पर वैयावृत्ति योग युक्तका के स्थान में समाधि संधारणता पाठ है। नंबर 10 में साधु प्रासुक परित्याग, यानी वो तो ऑर्डर बदल गई, बस इतनी बात है, वो तो छोड़ देते हम। नीचे से चौथी लाइन देखो, इसी में तत्वार सूत्र तथा भूतबली स्वामी द्वारा कथित भावनाओं के नामों में भी कहीं कहीं अंतर है। तत्वार सूत्र में संवेग, साधु समाधि, शक्तितः त्याग, मार्ग प्रभावना पाठ है, उसके बदले में यहाँ अन्य नाम आए हैं, और एक नवीन भी भावना है, क्षणलव प्रतिबोधनता, अब इसी का विशेषार्थ हम देख रहे हैं, जा रहे हैं पेज नंबर 42 पर। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है, जब अन्य कर्मों के बंध के कारण नहीं बताए गए, तब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों का सूत्रकार ने क्यों पृथक रूप से उल्लेख किया है, यह प्रश्न संभव होता है। इसके समाधान में वीरसेनाचार्य धवला टीका में लिखते, क्योंकि यहाँ तो कोई टीका ही नहीं उपलब्ध है यहाँ पर। ये जो वीरसेन स्वामी ने पहले 5 खंडों पर वो धवला टीका लिखी है, तो जहाँ इसी ऐसी जो वहाँ रेफरेंस आता है तो उसकी चर्चा यहाँ ले लेते हैं कि तीर्थंकर के बंध के कारण ज्ञात न होने से उनका पृथक उल्लेख करना उचित है। उसके बंध का कारण मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि हमने बंध के कारण कौन से देखे, सभी कर्मों के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, तो उसमें से सबके वो तो कॉमन है सबके लिए, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की अलग से बात बताई। तो कहते उसका मिथ्यात्व तो कारण नहीं हो सकता, कारण मिथ्यात्वी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि बांधना जो चाहते वो तो मिथ्यात्व जीव बांधना चाहते वो अच्छा लगता है ना, सभी कमा कमा करेंगे। सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब कहते हैं मिथ्यात्व असंयम जो है, तो कहते असंयम ही बंध का कारण नहीं है, क्योंकि संयमी जीव भी उसके बंधक होते हैं। कषाय भी बंध का कारण नहीं है, कारण कषाय के होते हुए भी इसके बंध का विच्छेद देखा जाता है, अथवा बंध का आरंभ भी नहीं होता है। कदाचित मंद कषाय को बंध का कारण कहे तो यह भी नहीं बनता, कारण तीव्र कषाय युक्त नारकियों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध देखा जाता है। पहले दूसरे और तीसरे नरक के नारकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले उसका बंध तो हर समय कर रहे हैं, और वहां तो उनके अपने अपने जो तीव्र कषाय चलेंगे, उस चौथे गुणस्थान के योग्य है भले, परंतु वो तो रहेंगे उनके भी। अरे प्रत्येक गति की अपेक्षा थोड़ी हिनाधिक होगी, हाँ, परंतु वो तो सामने वाला तो गुस्सा करेगा तो उसको चपेट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये तो वह नारकी के जो औदयिक भाव है, गति औदयिक भाव वो तो रहेंगे उसके, लेशा तो कपोत लेशा ही होती है, तीसरे तक कपोत लेशा है ना, और नारकियों के तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों के कपोत लेशा ही होती, वो कहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे। तीर्थंकर प्रकृति पहले 3 नरक में बनती, देखो क्या कहते हैं, क्या कहाँ लिखा है असंयमी,
असंयमी बंध का कारण नहीं है,
कारण नहीं है मेरे का, मिथ्या तो असंयम प्रमाद कषाय योग जो है अविरति है ना असंयमी, वो असंयम के कारण हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति असंयम के कारण हो रही है क्या, तो संयमी तो नहीं हो सकती फिर, उन्हें तो ना, पर असंयम के कारण बंद नहीं हो रहा है तीर्थंकर प्रकृति का। यहाँ बंद के कारणों की चर्चा चल रही है, वो असंयम है ना, जहाँ अप्रत्यक्ष आवरण का उदय है उसके कारण जो बंधने वाली जो है अप्रत्यक्षण इटसेल्फ उसके कारण बनती है, वो हम कहेंगे असंयम के कारण बन रही है। तीर्थंकर प्रकृति को हम असंयम के कारण बनती है ऐसा नहीं कहेंगे। देखो आगे नारकियों की भी बनते, तीव्र कषाय भी उसका कारण है, क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार सिद्धि देवो और अपूर्व करण गुणस्थान वालों में भी उसका बंध होता है। बंध का कारण कदाचित सम्यक तो को कहे तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अगर बंध का कारण हो जावे तो बंध से मुक्ति कहां से होगी। सम्यक दर्शन होते हुए भी बंध का कहीं कहीं अभाव देखा जाता है, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। यदि दर्शन की निर्मलता को कारण कहे तो दर्शन मोह के क्षय करने वाले सभी व्यक्तियों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए। दरअसल विशुद्धि कहते ना, वो तो निर्मलता है उसकी, तो सबको होना चाहिए क्षायिक समय दृष्टियों को, किंतु ऐसा भी नहीं है। अतः दर्शन की शुद्धता भी कारण नहीं है। कार्य कारण भाव का नियम तो तब बनता है जब कारण के होने पर नियम से कार्य बन जाए। यानी मिथ्यात्व का उदय तो नियम से मिथ्यात्व का बंध होगा ही, समझ में आती ना। तो ये कारण कार्य भाव का नियम कब कहेंगे, जब कारण के होने पर नियम से कार्य हो तो। जब क्षायिक सम्यक्ति जीव, सब क्षायिक सम्यक्ति जीव तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली शंका के निराकरण के लिए भूतबली स्वामी ने कहा है, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बंध करते हैं।
क्या
ये 16 कारण सहज होते हैं, शुभ हो या अशुभ हो या जो कुछ है, वो तो सोच समझ कर तो होते नहीं है। जैसे वो 16 कारण की पूजा करेंगे और ये वो, तो उसके कारण थोड़े ही होते बंधे। ये तो हम वो जिन्होंने ये बांधे थे और तीर्थंकर हुए थे उनकी पूजा है वो, नेचुरली सभी। कौन सोच समझ कर बांधेगा, तो उसने बंध अच्छा माना अगर सोच समझ कर बांधते तो। समझ में आई बात, बंद हो रहा है कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है। देखो क्या यही जो अभी इसके कारण जो बताए हैं, बिल्कुल बंद है, बंद हो रहा है ना वहां पर शंका। अभी बताएंगे ना। हाँ हाँ, देखो नाम कर्म के भेद तीर्थंकर की, तीर्थंकर ने तीर्थंकर प्रकृति की गोत्र संज्ञा क्यों की गई है। ये हमेशा भी जो तीर्थंकर गोत्र बांधा, तीर्थंकर गोत्र बांधा ऐसे कहते हैं, वो है तो नाम कर्म और उसको गोत्र क्यों कहते हैं। पीछे हमने नोट किया है क्या 42? हाँ, वो उच्च गोत्र के साथ अविनाभावी है ना, वो बताएंगे। देखो समाधान, उच्च गोत्र के बंध के अविनाभावी होने से तीर्थंकर प्रकृति को भी गोत्र कहा है। नीचे एक नंबर फुटनोट में वहां पर भी यही पूछा उन्होंने, तो अन्य प्रति में से वो प्राकृत में से उद्धृत किया, कथम तीर्थयरस्य नाम कम्मा वयवस्य बोधसन्ना, यानी नाम कर्म का अवयव होने ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति है उसको गोत्र क्यों कहते हो। न उच्च गोद बंध अविनाभावितनेन तीर्थयरस्वी गोदत्त सिद्धि दो, ये ताम्रपत्रीय प्रति में भी लिखा है कि उच्च गोत्र के साथ इसका अविनाभावी है। जहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध है वहां तो उच्च गोत्र ही बांधेगा, क्योंकि देव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, तो मनुष्य गति के साथ उच्च गोत्र ही तो बांध रहे हैं। नारकी भी, क्योंकि नारकी समय दृष्टि मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं और समय दृष्टि है तो निज गोत्र का बंध नहीं करेंगे, दूसरे में उसकी बंध विच्छित्ति हो गई है, इसलिए उसके साथ अविनाभावी होने से उसको गोत्र भी कहने में आता है। ऊपर पढ़ रहे अभी समाधान की तीसरी रहे, तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है। क्या कहा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ करने वाले मनुष्य ही है, कर्म भूमि के मनुष्य वो भी। इस बात का परिज्ञान कराने के लिए सूत्र में तथ्य शब्द का ग्रहण किया है। देखो पीछे के पेज पर आया था, पेज नंबर 41 पर प्राकृत में नीचे से छठवीं लाइन, तथ्य इमेण ही 16 कारण जीवा तीर्थ नामक कम्मम बंध दी। यानी वो तो एक बार शुरू हुआ बंध तो फिर मरकर देव में भी जाते हैं, मरकर नरक में भी जाते हैं, वहां पर भी होता है, परंतु शुरुआत यहाँ मनुष्य गति में होती है, इसलिए वो तथ्य शब्द आया था। शंकाकार पूछते, तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ अन्य गतियों में क्यों नहीं होता, क्योंकि वो केवली श्रुति केवली के पाद में होता है ऐसा जो कहा है वहां पर, तो बाकी भी समोषण में तो आते हैं ना, देव भी आते, तीरंज भी आते, उनको क्यों नहीं होता, ये भी प्रश्न हो सकता है, बताएंगे अभी। तो तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ अन्य गतियों में क्यों नहीं होता, समाधान, तीर्थंकर प्रकृति में सहकारी कारण, सहकारी का अर्थ क्या है तेजल? निमित्त, हाँ निमित्त का। केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य, केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य ने कौन? केवली। उसके बिना बंध का प्रारंभ नहीं होता। मनुष्य गति में केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव पाया जाता है, इससे मनुष्य गति में ही ब्रह्म बंध का प्रारंभ कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य गति में केवल ज्ञान उत्पन्न होकर तीर्थंकर प्रकृति पूर्ण विकसित हो अपना कार्य कर सकती है, अन्य गति में यह बात नहीं है। अतः तीर्थंकर प्रकृति का अंकुरारोपण मनुष्य गति में ही होता है। देखो क्या कहा, केवल वो केवली के पादमूल में गया इसलिए नहीं, जिस गति के वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा तो उसकी बिगिनिंग भी उसी गति में होगी, ये यहाँ कारण बताया। तो क्या
केवली के बाद मूल में ही होगा ना?
हाँ हाँ,
चौथे गुण स्थान वाले, पांचवे गुण स्थान वाले या
गुणी रहा, सब वहाँ समोषण में। हाँ हाँ, सबके लिए ये नियम है ना, केवली का ये तीर्थंकर ही होने चाहिए ऐसा नहीं है, केवली का। देखो नीचे भी लिखा है फुटनोट दो नंबर के, अन्न गति सु किम न प्रारंभ हो दी ती उत्ते, अन्य गतियों में प्रारंभ क्यों नहीं होते, यानी बिगिनिंग तीर्थंकर प्रकृति बांधने की शुरुआत मनुष्य गति में होती है, न होगी, नहीं होते अन्य गति में। केवल नानो व लक्ष्य जीव दव सहकारी कारणस्य, ये जो हमने हिंदी में पढ़ा ना कि केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य ही उसका सहकारी कारण है। तिथेर नाम कम बंध प्रारंभस्य तेन बिना समुपत्ति विरोहादो, यानी उनके बिना उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ आते 43 पेज पर, गोमरसार कर्मकांड की संस्कृत टीका में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य गति में प्रारंभ किया जाता है क्योंकि अन्य गतियों में विशिष्ट विचार क्षोभशम आदि सामग्री का अभाव है। इसी कारण मनुष्य गति का सूचक नरा यह पद त्राणवे गाथा में आया है। टीकाकार के ये शब्द महत्वपूर्ण है, नरा इति विशेषणम शेष गति ज्ञानम अब्बा करोति, यानी अन्य गतियों के और अन्य का निषेध करते हैं। विशिष्ट प्रणिधान क्षोभ समाधि सामग्री विशेष अभावत, यानी अन्य गतियों में इतना विशेष क्षोभशम नहीं पाया जाता है ये बाकी सामग्री का अभाव होने से। ये कर्मकांड की संस्कृत टीका में से उन्होंने ये बात बताई है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम सम्यक्त्व में नहीं होता क्योंकि उसका काल स्तोक अंतर्मूर्त प्रमाण है, उसमें षोडश कारण भावनाएं नहीं बाही जा सकती। महाबंधकार का यह अभिमत नहीं है, बुद्धबली आचार्य तो उसमें भी उसका बंध होता है समानेंगे। यह बंध प्रत्यक्ष केवली श्रुत केवली के चरणों के समीप ही होता है। केवली और श्रुत केवली, केवली श्रुत केवली ऐसा दोनों ही आता है, कारण अन्यत्र उस प्रकार की विशिष्ट विशुद्धता का अभाव है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उनके वो विशुद्धि से हमें क्या लेना है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे ज्ञानी की ही देशना क्यों होती है, तो नियम सार में तो बताए उनके दर्शन होने के क्षोभ समाधि पाए जाते इसलिए, यानी उतनी वहां निर्मलता है। इस तरह से बंद सामित्य विचय मूल पृष्ठ 75 में लिखा है, यानी इसी पुस्तक में, पारद्ध तिथेर बंधादो तदीय भवे तिथेर संत कम्य जीवाणम मोख गमन नियमादो, यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध आरंभ के भव से, यानी कौन से भव में, मनुष्य में उसका आरंभ होता है, तृतीय भव में, यानी तीसरा भव, यानी ये पहला भव देव का, दूसरा और फिर मनुष्य का तीसरा, उसमें तीर्थंकर हो गए। या अभी श्रेणी राजा जैसे है, मनुष्य का है पहला भव, नरक का दूसरा और तीसरा, उस भव में मोक्ष जाएंगे। तो कोई भोग भूमि वाला तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? नहीं बांध सकता। क्षायिक जा सकता है वहां, क्षायिक समय दृष्टि के लिए वो तो वहां जाके चौथे भाव में मोह जा सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन उसको नहीं होगा। यानी दूसरी भी बात है, जिसने मनुष्यायु बांधी है, तीर्यंचायु बांधी है पहले, और बाद में जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है, क्षायिक तो हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता। नरकायु बांधने वाला तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है। अभी सैनिक राजा का हम उदाहरण है हमारे पास। नहीं बांधते, वही तो कह रहे हैं ना, तीर्यंच कभी नहीं बांधते, देव नारके और मनुष्यों के सिवा और कोई नहीं बांधते। विनी भव अभी अभी हाँ जाएंगे नहीं कभी, या तो देव में जाएंगे या नारके आयु बांधिए तो नरक में जाएंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। यहाँ लिखा ना, तीर्थंकर प्रकृति के बंधारम के भव से तृतीय भव में तीर्थंकर कर्म के सत्वयुक्त जीवों के मोक्ष गमन का नियम है, उसकी सत्ता है ना, वो तो नियम से मुक्त जाएंगे। अतएव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक तीन भव से अधिक संसार में नहीं रहता। समझ में आई बात? पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा इस प्रकृति के बंधक के कारण 16 कहे गए। यानी ये तो भेद करके समझाना था, इसलिए 16 भेद बताए। द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने से एक कारण भी इसके बंध का हेतु है, दो भी कारण होते हैं, अतः 16 ही होते हैं या नहीं, इस संशय के निवारण के लिए 16 कारणों की गणना सूत्र में की गई है। देखो देखो, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कहेंगे ये तो 16 भेद कर करके, किसी एक का भी नाम लेंगे हम, इसके कारण उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। द्रव्यार्थिक नय ने सबको जनरल एक भी कारण को बंध का हेतु कहेंगे हम। नहीं नहीं, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आ गए उसके अंदर। वही तो कह रहे हैं ना, यहाँ पर चलती है ना, वो तो उसमें गर्भित कर दे कर बस बोलते हैं। देखो देखो नीचे का पढ़ेंगे। इन भावनाओं के स्वरूप पर वीरसेनाचार्य ने बंध सामित्व विषय नामक तृतीय खंड की धवला टीका में विशेष विवेचन किया है। ये 8वीं पुस्तक है, धवला की 8वीं पुस्तक। ये तीसरा खंड कहा, पहले दो खंडों के नाम क्या है? दूसरे नंबर है खुद्दाबंद जो 7वीं पुस्तक है। जीवस्थान, जीवठान, पहली 6 पुस्तक है तो जीवठान की है, 7वीं पुस्तक खुद्दाबंद की है। वो खुद्दा ने क्षुद्र बंध और ये महाबंध है। हाँ, और ये तृतीय खंड नाम दिया था बंध सामित्व विषय। अभी यहाँ जो त्रुटित अंश आने वाला है अभी, तो उसमें वो आपको वो पुस्तक भी लानी है त्रुटित अंश की, और 8वीं पुस्तक भी साथ में रखनी है। वो तो 49 पेज पर आई है। हाँ कल लाना। जाएंगे क्या उधर तक? 49 तक ठीक है, देखें। दो दिन लाओ, उसमें क्या होगा? बच्चों को इतने बड़े बड़े बोझ देते हो ना। देखो उसका मर्म इस प्रकार है। दर्शन विशुद्धता, यह भावना 16 कारण भावनाओं में प्रथम संग्रहित की गई है। इसका भाव तीन मूर्ता तथा अष्टमल रहित निर्मल सम्यक दर्शन का लाभ होना है। फिर शंका, यदि इस एक ही भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो सभी सम्यक द्विजी उसका बंध क्यों नहीं करते? यानी इस सबका संग्रहण दर्शन विशुद्धि में किया ऐसा कह दिया, तो सबको बंधन होना चाहिए था। समाधान, शुद्ध नय से मात्र तीन मूर्ता तथा अष्टमलों से व्यतिरिक्त पना ही दर्शन विशुद्धता नहीं है। इसके साथ ही साथ साधु प्रासुक परित्यागता साधु समाधि संधारणता साधु वैयावृत्ति युक्तता अरहंत भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन वत्सलता प्रवचन प्रभावनता अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता आदि का भी समावेश होना आवश्यक है। इस प्रकार अन्य भावनाओं का भी संग्रह करने वाली, बताए ना दर्शन विशुद्धता में सब उसमें संग्रहित है, गर्भित है सारे। दर्शन विशुद्धता तीर्थंकर का बंद करती है, यानी अकेली दर्शन विशुद्धता नहीं लेनी, उसमें जिसमें ये सब बातें भावनाएं गर्भित है संग्रहित है ऐसी दर्शन विशुद्धता लेनी। विनय संपन्नता भी तीर्थंकर कर्म को बांधती है। विनय के ज्ञान दर्शन और चारित्र की अपेक्षा तीन भेद, यानी ज्ञान विनय दर्शन विनय और चारित्र विनय। ज्ञान विनय में अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, यानी ऊपर जो 16 बताई है तो विनय संपन्नता में उसको गर्भित करके बता सकते हैं। बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति संग्रहित है। दर्शन विनय का अर्थ है प्रवचन उपदिष्ट संपूर्ण तत्वों का श्रद्धा तथा त्रिमूर्ता और अष्टमल का त्याग करना, इसका ही नाम दर्शन विनय है। सम्यक दर्शन है तो दर्शन विनय ने उसके झुककर नमस्कार करना इसका अर्थ नहीं है। ये दर्शन प्रकट होना जो उसके ऊपर दर्शन विशुद्धता का है ना, यह दर्शन विनय में प्रवचन में उपदिष्ट उपदेशित संपूर्ण तत्वों का श्रद्धा और तीन मूर्ता और अष्टमल का त्याग, उसमें भी आया था ना ऊपर दर्शन विशुद्धि में भी आया था। इसमें अरहंत सिद्ध भक्ति यानी अरहंत भक्ति सिद्ध भक्ति क्षण लव प्रतिबोधनता लब्धि संवेग संपन्नता तथा प्रवचन प्रभावनाता का सद्भाव पाया जाता है। चारित्र विनय में शील व्रतेषु निरतिचारता आवश्यकेशु अपरिहीनता यथाशक्ति तप साधु प्रासोक परित्यागता साधु समाधि संधारणता साधु वैयावृत्ति योग्य युक्त योग युक्तता प्रवचन वत्सलता संग्रहित है। इस प्रकार अनेक भावनाओं से समन्वित एक विनय संपन्नता रूप भावना तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करती है। समझ में आती है बातें, यानी विनय संपन्नता कहने से उसमें वो दर्शन विशुद्धि भी उसके अंदर गर्भित हो गए, अन्य भी बहुत सारी भावनाएं उसके अंदर आ गए। शंकाकार पूछते हैं जिस प्रकार यहाँ देव नारकियों के दर्शन और ज्ञान विनय का अभाव कहा है उसी प्रकार चारित्र विनय का अभाव क्यों नहीं कहा है, ने ऊपर रहेगी। यह दर्शन तथा ज्ञान की विनय देव तथा नारकियों में कैसे संभव हो सकती है, इससे इसे मनुष्यों में ही कहा है। ये जो सब टोटल जो बताए ना इतने भेद ये मनुष्यों में हो सकती है। तो कहते जिस प्रकार देव नारकियों में दर्शन और ज्ञान विनय का अभाव कहा उसी प्रकार चारित्र विनय का अभाव क्यों नहीं कहा। समाधान, ज्ञान दर्शन विनय का विरोधी चारित्र भी नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञान दर्शन विनय के अभाव में चारित्र विनय का भी अभाव होगा। यह बात प्रकट करने को चारित्र विनय का पृथक उल्लेख नहीं किया है। अब हम यही रुकते हैं क्योंकि बाकी भावनाओं की चर्चा हम कल करेंगे। हाँ, जो को एक में तो अन्य कैसे घटित हो सकती है उसकी बात यहाँ। मुनियों के तो होते ही होते हैं, ये चारित्र विनय तो मुख्यतः मुनियों के ही तो है, होगे ना उनके भी होगे क्या सभी ने उनको मुनि उनको होते कि नहीं ये पूछ रहे वो। देखो भेद करके कहो तो 16 है और अब इन्हें उसको संग्रहित करके बोले तो थोड़े में सब समा जाते हैं।
16 जो है जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उनको है कि सभी को इन जनरल हो सकते
हैं। नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर प्रकृति ये इनके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, बस इतना। अभी उसमें एकाध एकाध किसी के होगा ना प्रचलता या अरिहंत भक्ति सिद्ध भक्ति ऐसे हो गए, परंतु ये सभी बांधने के योग्य परिणाम कुछ अलग है उसकी बात है। यहाँ पर ये शुभ भाव रूप भी है ना उसमें सबको सब नहीं हो गए।
हाँ,
हो सकता है। यही रुकेंगे अभी। चावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई।